देव की कथा की थी, लेकिन आज लग रहा है कि सारा ऑडियंस डिफरेंट है। एनीवे, तो संक्षेप में कहा जाए तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उनकी योजना है, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेते हैं, और जब 100वां यज्ञ चल रहा है तो उस समय वामन देव प्रकट हो जाते हैं। तो वामन देव प्रकट होने तक कथा पिछली बार की गई थी। तो जब वामन देव प्रकट होते हैं तो वो बलि महाराज का गौरव करते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसे वंश में जन्म हो गया आपका जिसमें प्रहलाद जी का जन्म है, जिसमें विरोचन जी का जन्म है, महान योद्धा, महान बलशाली पुरुष, ये सब वंश में आपका जन्म हुआ है, और विशेष बात यह है कि आपके पूरे वंश में कभी भी किसी भी व्यक्ति ने दान देने का वचन देने के बाद में कभी दान दिया नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं। आपके वंश में जितने भी लोग हुए हैं वो पराक्रमी तो थे ही, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने दान का दिया हुआ वचन पूरा किया है, ये आपके वंश का गौरव है। फिर कहते हैं कि जो पिछली बार हमने बात की थी लास्ट में, मामनदेव बताते हैं कि आपके पिताजी जो थे विरोचन, जो प्रहलाद जी के पुत्र हैं, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, तो विरोचन के समय पर एक बार देवता लोग उसका तेज को हरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर रूप बदलकर उनके पास में आकर उनके आयुष्य का दान मांगते हैं, यानी कि उनके जीवन का समय का दान मांगते हैं, आयुष्य ही मांग लेते हैं। तो ये जानने के बाद भी कि ये देवता लोग ब्राह्मण का भेष बदल कर आए हैं और मुझे छल कर रहे हैं मेरे साथ, फिर भी वो अपने आयु का दान दे देते हैं, ऐसे वंश में आपका जन्म हुआ है, ऐसे वो गौरव कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि ब्राह्मण को हमेशा जितना ज़रूरी है उतना ही लेना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण दक्षिणा में ज़रूरत से अधिक धन इकट्ठा करता है तो वो पाप वाले कार्यों में लिप्त हो जाता है, और अगर ब्राह्मण केवल अपने ज़रूरत का ही दान लेता है तो वो पाप वाले कार्य में लिप्त नहीं होता है। तो लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, अगर बहुत सारा धन आ गया दक्षिणा में तो जितना चाहिए उतना रख के बाकी सब वो भी दान देते थे। ब्राह्मण तो दान लेते हैं ना, लेकिन दान लेने वाले ब्राह्मण भी बचा हुआ सब कुछ बांट देते थे, फिर कल के लिए, कल जो मिलेगा वो कल देखेंगे, लेकिन आज मिला है इसलिए कल के लिए उसको स्टोर करके रखेंगे नहीं, वो सच्चा ब्राह्मण है। अगर यह ज़्यादा मुमकिन नहीं है समझो ऐसा करना, फिर भी लोभ से कभी भी दक्षिणा या दान इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग डोनेशन भी इकट्ठा करते हैं ना, तो लोभ से नहीं करना चाहिए, सेवा के लिए करना चाहिए। फिर बलि क्या बोलते हैं, कह रहे आप मुझसे 3 पग जमीन मांग रहे हो, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसके पास कोई भिक्षुक अगर एक बार भी आ जाए तो वो जीवन भर कभी दोबारा उसको मांगना नहीं पड़ेगा, ऐसा भिक्षा देने वाला हूं मैं। एक ही बार मेरे पास आएगा तो जीवन भर के लिए जो उसका जरूरी है वो सब जरूरत पूरी हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति के पास आप दान मांगने आए हो, ऐसा बोल रहा है। तो वामनदेव कहते हैं कि ये सब बातें बहुत जरूरी है, कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये जो संवाद हो रहा है ना वो बलि देव, बलि महाराज और वामन देव के बीच में, ये संवाद हमारे लिए बहुत पोषक है, बहुत आवश्यक है। तो इसमें वामनदेव कहते हैं कि अपने कर्म के अनुसार जो भी हमको प्राप्त होता है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए, और अपने कर्म के अनुसार जो मिल रहा है उसमें अगर असंतुष्ट है और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए हम तड़प रहे हैं, तो कहते हैं कि तीनों लोगों का साम्राज्य भी आपको मिलेगा तो भी आप तड़पते ही रहेंगे। इसलिए जो व्यक्ति, ये हमारे सबके लिए ज़रूरी है, जो करोड़पति है उसके लिए भी ज़रूरी है, जो गरीब आदमी है उसके लिए भी जरूरी है, जो भिक्षुक है उसके लिए भी जरूरी है, जो मध्यम वर्गीय है, जो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, जो बड़ा काम करता है या छोटा काम करता है, छोटा पगार लेता है बड़ा पगार लेता है, ये सबके लिए लागू है। क्योंकि इस दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है, करोड़ों की प्राप्ति करने के बाद भी उसको और चाहिए होता है, और जिसको हजारों में सैलरी है उसको भी और चाहिए होता है, और जिसके पास दो टू व्हीलर है उसके पास भी फोर व्हीलर की इच्छा होती है, जिसके पास फोर व्हीलर है उसके लिए और बड़ी गाड़ी लेने की इच्छा होती है। इसलिए सबको लागू है। क्या बताया इसमें कि अपने कर्म के अनुसार, उसको कहते हैं डेस्टिनी, यानी जो नियति में जो लिखा है आपके भाग्य में जो लिखा है, उसे प्राप्त करने पर जो संतुष्ट रहता है ना, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य उम्मीदवार है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। संतुष्टि ये मन का अलंकार है, मन के शुद्धि का अलंकार है। और अगर संतुष्टि होती है आपको मन में, जो भी है आज, जो भी है कल, जो भी था कल संतुष्ट थे, आज ज़्यादा आ गया तो आज भी संतुष्ट है, कल आज से कम हो गया तो भी कल भी संतुष्ट है, और परसों सब कुछ नष्ट हो गया तो भी संतुष्ट है, चार दिन के बाद सब दोबारा मिल गया तो भी संतुष्ट है। मतलब क्या, हर अवस्था में संतुष्ट वो व्यक्ति मोक्ष का लाभ करने के लिए योग्य उम्मीदवार है। इसमें से कितने लोग हैं इसको मोक्ष नहीं चाहिए? एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको मोक्ष नहीं चाहिए? मोक्ष पहला कदम है, भगवान की भक्ति और प्रेम प्राप्त करने के पहले मोक्ष प्राप्त होता है, फर्स्ट स्टेप है वो, और वो प्राप्त होना बहुत आवश्यक है आगे की प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो मन जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक यहीं पर तड़पते रहता है, और मन जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा का चक्र जो है वो बार बार लगातार चलते रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माता के गर्भ में आने का जो चक्र है वो चलते रहता है। क्यों चलते रहता है? अगर हम लोग असंतुष्ट रहेंगे तो। और साथ में ये भी लिखा है, अगर आप अपने आज के प्राप्ति में संतुष्ट हो तो आपको आध्यात्मिक उन्नति करना बड़ा आसान हो जाएगा, और अगर आपकी आज की प्राप्ति में संतुष्ट नहीं हो तो आपका आधा मन जो नहीं मिल रहा है उसमें लगा रहेगा, तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। भगवद गीता में ना भगवान बताते हैं कि इस जीवन में केवल दो प्रकार के दुख हैं, केवल दो प्रकार के दुख हैं, न शोचति और कांक्षति, मतलब जो मेरे पास था वो खो गया। इसका एक दुख होता है ना कि मेरे पास पैसे थे वो खो गए, चोरी हो गए, मतलब शोक कहते हैं उसको, शोक, शोचति, जो मेरे पास था वो खो गया। और एक दुख होता है जो मेरे पास नहीं है इसलिए दुख हो रहा है, मतलब कांक्षति, आकांक्षा, आज नहीं है चाहिए मुझे वो। आदमी केवल दो वक्त चीज़ के लिए रोता है बस। आप सोच के देखिए, विचार करिए घर जाके आराम से, तो आपको मालूम पड़ेगा सारे जितने प्रकार के भी दुख हैं वो इस दो कैटेगरी में आते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, मेरा भक्त जो है वो हमेशा आनंदी रहता है क्योंकि वो कुछ खोने पर दुख नहीं करता है और कुछ नहीं मिला इस पर दुख नहीं करता है। और वही व्यक्ति भगवान बोलते हैं कि अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति मेरी ओर कर सकता है। और भी कहा गया कि अगर ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो अगर लोभी होता है, ग्रीडी, और असंतुष्ट भी है, तो ऐसा व्यक्ति अपना जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, दिव्य शक्ति, भक्ति वाली शक्ति, उसको भी खो बैठता है, मतलब अपने आध्यात्मिक अनुभूति से वो ढल जाता है। इस बीच में जब भगवान बोल रहे हैं, बलि महाराज बोल रहे हैं, तो शुक्राचार्य उसके गुरु वहाँ बैठे ना, यज्ञ कर रहे हैं ना उनके लिए, वो कान में बोलते हैं, अरे राजा ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, ये देवताओं के हित में अपना कार्य करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और तुम उसको तथास्तु कहकर दान देने को तैयार हो गए हो तो मूर्ख हो, वो तुम्हारे से सब कुछ छीन ले जाएगा। क्या क्या छीनेगा? आपका जमीन, आपके लोक, आपका वैभव, आपका सौंदर्य, आपकी शक्ति, आपकी कीर्ति, सब कुछ छीन लेगा, और आपका सब कुछ छीन के देवताओं को दे देगा। ये तुम्हारे शत्रु देवता के हित में आए हैं, उनको मदद करने के लिए, आपको छल करने के लिए आए हैं। इनके बहकावे में मत आना, दो पर कदम में ये तुम्हारे पास जो भी कुछ है, तुमको लगता है इतना हवा ढव्य साम्राज्य है, वो दो ही कदम में नाप लेंगे सब कुछ। तो तुम तीसरा कदम कहाँ रखाओगे? तुम्हारी जो भी कुछ चीजें हैं वो सब कुछ छीन के देने के बाद में तीसरा कदम रखने के लिए जगह भी नहीं होगी, इसलिए तुम नरक में जाओगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं उसका मन बदलने के लिए। वो कहते हैं खुद का विनाश करके कभी भी दान नहीं देना चाहिए, पांच चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, उसके बाद में दान करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, धर्म के लिए, अपने कीर्ति को बचाए रखने के लिए, कीर्ति जो होती है ना, अपने ऐश्वर्य को संभाल कर रखने के लिए, इंद्रिय भोग यानी एंजॉय करने के लिए, और परिवार को पालने के लिए, ये पांच चीज़ों को संभाल के ही बचा हुआ होगा तो दान करना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे तो ये पांच चीज़ों के लिए तो पैसा ही नहीं मेरे पास। अरे पांच क्या, इसमें से एक परिवार पालन के लिए भी पैसा नहीं है तो दान करने का तो चांस ही नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे। लेकिन ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि कुछ भी हो, अगर आपके पास 10 रुपये का इनकम हो दिन का, उसमें भी बुद्धिमान व्यक्ति को जो भी आपको मुमकिन है वो भगवान सेवा में दान देना चाहिए। यही रूल 100 रुपये को लागू है, 10,000 को लागू है, 10 लाख को लागू है, 10 करोड़ को भी लागू है और 100 करोड़ को भी लागू है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके भाग्य से आपको जितना भी पैसा मिलता हो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आपको भगवान की सेवा में देना चाहिए, नहीं तो वही 10 रुपया और 10 करोड़ रुपया आपको दुनिया में वापस आने के लिए मजबूर करेगा, दुनिया के कर्मों के बंधन में बांध देगा, आपको पाप करने में प्रवृत्त करेगा, आपकी मति को भ्रष्ट करेगा। चाहे वो 10 रुपया हो वो भी भ्रष्ट करेगा और 100 करोड़ भी आपको भ्रष्ट करेगा। ये रखना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ संदेह नहीं है। लेकिन ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने खुद का भी मुंह का हिस्सा निकाल के किसी को दिया है। 48 दिन तक निर्जला उपवास करने के बाद में जब उपवास छोड़ने का समय आया तो रांती देव जहाँ बैठे हुए थे वहाँ कुछ कुत्ते आए, तो कुछ हिस्सा कुत्तों को दे दिया उसने, फिर ब्राह्मण आया उसको भी दे दिया। 48 डेज जनता के कल्याण को के लिए यज्ञ करने के बाद की बात है ये। तो वो कुत्ते और ब्राह्मण कौन थे, शिवजी और उसके उनके गण थे, वो परीक्षा लेने आए थे कि राजा का त्याग कितना बलवान है। तो ऐसे भी दानी हुए। राजा शिवी के पास एक वो आया ससाणा, क्या बोलते हैं उसको, हॉक हॉक, कबूतर को पकड़ते आया, और कबूतर ने राजा का आश्रय ले लिया। तो राजा ने बोला कि तुम कबूतर को नहीं मार सकते क्योंकि कबूतर ने मेरा आश्रय लिया है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं मेरे शरीर से कबूतर के वजन का मांस काट के दूंगा आपको अगर आपको भोजन की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि आपने मेरा भोजन को आसरा दे दिया तो मैं भी आपका प्रजा हूँ, तो मेरा भोजन खिलाओ मुझे आप। तो राजा ने अपने शरीर से मांस काट कर कबूतर के वजन का मांस करने का प्रयास किया, लेकिन कबूतर का वजन जो है वो किसी से पूरा ही नहीं हुआ, फिर वो खुद जाके पलड़े में बैठ गया। मतलब उसने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने आप का शरीर भी दान देने के लिए आगे पीछे देखा नहीं। तब वो जो कबूतर था और वो जो ससाणा था हॉक, वो यमराज और इंद्र करके प्रकट हो गए और उन्होंने शिवी राजा को वरदान दिया। तो ऐसे भी दानी लोग हैं। हाँ, मृत्युशैया पर, मतलब युद्ध में महाभारत के कर्ण मरा पड़ा था, उधर एक ब्राह्मण आया दान मांगने के लिए। तो कर्ण के दांत सोने के थे, तो कर्ण ने बोला, दोस्त अपने सर्वेंट को बुलाया, बोला एक पत्थर लेके आओ और ये दांत तोड़ो और उसको दे दो। तो अपने दांत तोड़ के सोने के उसने दान दे दिया उस समय। तो कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले कर्ण तुम्हारे दानशूरता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वरदान मांगो। आपने कहानी सभी सुनी ही होगी, ध्यान से सुनो। भगवान प्रसन्न होकर कर्ण को बोलते हैं मांगो मुझसे। तो कर्ण कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह पर जलाओ जहाँ पर आज तक कोई जला नहीं होगा। अभी आप बताओ इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है? सब जगह मृत्यु होती है, जिस जगह का नाम ही मरते लोक है, मृत्यु लोक। तो आखिर में भगवान ने उसको कहाँ जलाया, किसी को पता है? भगवान ने अपने हाथ में उसको अग्नि दिया, कर्ण को, इतना आदर सम्मान किया उसका भगवान ने। तो कहने का तात्पर्य है कि इन पांच चीज़ों को बचा के दान देना चाहिए, बात सही है, लेकिन दान देना आवश्यक है। सब सब मनुष्य जो बुद्धिमान है, जिनको भगवान के चरणों में आश्रय चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको दुखों से मुक्ति चाहिए, उनको अपने छोटे से इनकम में से छोटा सा टुकड़ा भी जो तिनका जो है वो दान देना चाहिए। तो ये समझा रहे हैं उसको, मत दो इसको, मत दो, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, तुमको भिखारी बना देगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो यहाँ पर सुखदेव जी जो है ना, वो जो भागवत लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, वो समझाते हैं यही फर्क है स्वार्थी ब्राह्मण में और वैष्णव ब्राह्मण में। स्वार्थी ब्राह्मण जो है वो हमेशा मुझे क्या मिलेगा दक्षिणा में वो देखते रहता है, और वैष्णव ब्राह्मण जो है वो आपका कल्याण किस में है उसी को देखते रहता है, और भगवान किससे प्रसन्न हो जाएंगे वही देखते रहता है। शुक्राचार्य जी इतने उपदेश क्यों कर रहे हैं उसको, मत दो उसको, मत दो, वो तो देवताओं के हित में आया है, तुम्हारे क्षत्रियों के हित में आया है, वो भगवान विष्णु है, तुम्हारा शत्रु है, उसको मत दो, उसको मत दो, क्योंकि उसको दिखाई पड़ रहा था कि ये विष्णु है, उतना साक्षात्कार था उनको, लेकिन उनको चिंता थी कि ये सब कुछ अगर हार बैठेगा तो मुझे दक्षिणा क्या मिलेगी, मेरा परिवार कौन चलाएगा, इसलिए उसको परावृत्त कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वैष्णव जो होता है ना ब्राह्मण, वो हमेशा कभी भी दक्षिणा की इच्छा से यज्ञ नहीं करता है, केवल जिनके लिए यज्ञ कर रहा है उनके कल्याण के लिए और भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करते रहता है, पूजा आदि करते रहता है। फिर बलि महाराज, अभी देखो कितना डिफिकल्ट प्रसंग है, बलि महाराज को कान में शुक्राचार्य के द्वारा पता चल गया है कि ये ब्राह्मण नहीं भगवान है, और प्रहलाद जी ने जो उनके दादाजी हैं उन्होंने उनको बचपन से प्रहलाद जी की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है उसको, जिसमें उन्होंने क्या सीखा है कि जीवन का उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना है। और अभी कान में गुरु बता रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति विष्णु है और वो आपके सामने आकर भिक्षा मांग रहा है, तो कहता है कि गुरु जी का कर्तव्य है कि गुरु जी को शिष्य को अपने शिष्य को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। गुरु का मतलब क्या होता है, हु इज गुरु, जो आपको साइकिल सिखाता है वो गुरु नहीं है, वो तो पेट पालने के विद्या सिखाने वाला आचार्य है। सही गुरु कौन है, सही गुरु वो है जो आपको आपके बद्ध अवस्था से मुक्त करके भगवान से मिलाएगा एक दिन, वो सही गुरु है। तो मेरे गुरु जी जो है उनका कर्तव्य है कि मुझे विष्णु से मिलाना चाहिए, और विष्णु सामने आ गए तो बोलते उसको मत दो। गुरु जी का कर्तव्य है कि कब भगवान सामने आए तो भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, वो मेरे गुरु जी को सिखाना चाहिए, लेकिन ये मुझे बोल रहे हैं कि मत करो। तो कहते हैं कि ये समय है कि इस गुरु को त्याग करना चाहिए। गुरु को केवल एक ही स्थिति में हम लोग त्याग कर सकते हैं, अगर वो अपने स्थिति से ढल जाते हैं। स्थिति मतलब क्या, जिस स्थिति में हमेशा वो आपको भगवान के साथ जोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, अगर वो आपको भगवान से हटने के लिए कहते हैं उस समय आपको गुरु जी को त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी उस स्थिति में है, अपने शिष्य को भगवान की सेवा करने के लिए परावृत्त कर रहे हैं, तो मन में सोच लेते हैं कि इनका त्याग करना चाहिए। वो सोचते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण को दिया हुआ वचन पालन नहीं कर सका तो मेरे जीवन का मतलब क्या है, क्योंकि पृथ्वी ने कई बार कहा है, भागवत में भी कहा है, कई बार कहा है कि मैं जितना चाहे उतना बोझ उठा सकती हूँ, कोई मुझे भारी नहीं होता है वो, लेकिन एक है पाप और दूसरा है असत्य, उसका मैं बोझ उठा नहीं सकती। वो कहते हैं कि सब कुछ खोने पर भी अगर आप झूठे हो ऐसे आपकी ख्याति होती है तो आपका सब कुछ नष्ट हो गया, और अगर सब कुछ खोने के बाद भी आप सत्यवादी रहते हो तो कुछ भी आप खोते नहीं हो, नथिंग यू आर लॉस्ट। इसलिए वो मन में सोच रहे हैं कि मैं मृत्यु से भी डरता नहीं हूँ, मैं नरकवास से भी डरता नहीं हूँ, मैं गरीबी से डरता नहीं हूँ, मेरा जो पद है आज राजा का पद है, और राजा से पद से मैं ढल जाऊँगा उससे भी मुझे कोई चिंता नहीं है, और सागर जैसा दुख मुझे होगा, डिस्ट्रेस, परेशान हो जाऊंगा, यातना होगी, उससे भी डरता नहीं। लेकिन मैं डरता हूं ब्राह्मण को दिए हुए वचन को ना पालने की वृत्ति से। अगर मैं ब्राह्मण को दिए वचन को नहीं पाल सका तो उस बात से मैं डरता हूं, ऐसा विचार कर रहे मन में हो, तो क्यों मैं ब्राह्मण को चीट करूं, क्यों उनको फंसाऊं, क्यों उनको दिया हुआ वचन ना पालूं। और एक बहुत सुंदर बात कहते हो, ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तो बलि महाराज एक महान वैष्णव है, और महान वैष्णव का सोच का सोच कैसे होती है ये यहाँ पर बता रहे हैं हम लोग। तो बलि महाराज क्या सोच रहे हैं कि आज तक जितने भक्त संत हुए हैं उन सब लोगों ने भगवान की इनडायरेक्ट सेवा किया है, गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से विग्रह की पूजा किया है, लेकिन मैं ऐसा अकेला भाग्यवान व्यक्ति हूँ कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े होकर मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। नो वन टिल नाउ हैज हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली गिव चैरिटी टू द ऑल मर्सीफुल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जितना भी इकट्ठा किया हुआ धन है वो प्रत्यक्ष भगवान को दान देने का मौका केवल मुझे प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं मेरे भाग्य का ये मौका गंवाना नहीं चाहता। तो गुरु जी से कहते, गुरु महाराज मैं तो दान दूंगा इसको। इतना सब जो बातें हुई मन के अंदर हो रही है, अभी मुंह से बोल रहे हैं कि मैं अभी दान दूंगा इनको, मैं मेरे वचन से पीछे नहीं हट सकता। तो तुरंत उनको क्रोध आता है गुरु जी को, क्यों, अभी तो मेरी दक्षिणा का सब प्लान समाप्त हो गया है, जो मेरा उगम दक्षिणा का था, तीनों लोगों का स्वामी मेरा यजमान था, वो भिखारी बनने जा रहा है, इसका मतलब मुझे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसको क्रोध आता है और कहता है, मूर्ख व्यक्ति, मेरे आज्ञा का पालन न करने की वजह से तू सारा दौलत, धन दौलत, यश कीर्ति, सुंदरता, पावर, प्रभाव सब कुछ खो बैठेगा। बोले कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। उतने में उसकी पत्नी वहां पर आती है, सोने का पात्र लेकर आती है, कलश लेकर आती है और भगवान के चरण धोते हैं बड़े प्रेम और भक्तिभाव से, और उनके चरणाभिषेक का जल जो है वो सर पे छिड़कती है अपने। और बलि महाराज का ये निश्चय देखकर, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये व्यक्ति भगवान है, ये अभी छोटे से भाव में रूप में आए हैं, ये बड़े हो जाएंगे, सब नाप लेंगे, मुझे भिखारी बना देंगे, सब पता है उनको। इतना होने पर भी वो तैयार है, फिक्स्ड है अपने वचन में। ये उसका निश्चय देखकर आकाश में से देवता लोग जो उसके शत्रु हैं पुष्पों का वर्षाव करते हैं कि शत्रु होने पर भी कितना गौरवशाली शत्रु है, भगवान के साक्षात कृपा प्राप्त करने वाला है। तो फिर बलि महाराज के सामने ही बलि महाराज क्या करते हैं, कमंडल लेते हैं और जल छोड़ते हैं और मंत्र बोलकर संकल्प करते हैं कि ये लीजिए, आप 3 कदम भूमि आपको दे रहा हूँ मैं। तो सबके आंखों के सामने बलि के सामने राक्षस बैठे हुए हैं, परिवार बैठे हुए हैं, देवता लोग आकाश में खड़े हैं, भगवान विष्णु जो है वो वामन देव अपने आप को विस्तारित करते हैं और विराट रूप धारण करते हैं। 1 कदम से पृथ्वी और सारे नरक लोगों को नाप लेते हैं और दूसरा पैर जब उठाते हैं तो वो पैर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा लोक तक पहुंच जाता है। और ब्रह्मा लोक में ऐसे कहते हैं कि वो जब पैर ऐसा ऊपर आया ना उनका, तो पैर के नाखून से जो तेज निकला वो ब्रह्मा लोक के तेज को अंधकार बना दिया उसने। उस तेज के सामने ब्रह्मा लोक का तेज अंधकार के समान लगने लगा। तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए, अरे मेरे लोक का तेज इतना, क्या कहते हैं उसको, कमजोर कैसे हो गया। तो वो देखते हैं कि ये सारा तेज जो है इन नाखूनों से आ रहा है, जो भगवान के चरण कमल के नाखून ही है। तुरंत भाग के आते वो और अपने कमंडल से उस जल पैर का अभिषेक करते हैं, पैर धोते हैं उनको, और वो धोए हुए पैर को, जल को कमंडल में इकट्ठा करते हैं। और कहते हैं कि जब वो ऐसे जा रहे थे ना पैर ऊपर, तो जो ब्रह्मांड का आवरण है ना उसको अंगूठा लग के उसका छेद होता है और वहां से गंगा जी प्रकट होती है। पैर का, दाहिने पैर का बड़ा जो अंगूठा होता है उसके नाखून से वहां पर स्पर्श होकर छेद गड्ढा पैदा होता है, वहां से गंगा जी आती है। तो गंगा जी का मतलब क्या है, वहां से निकला हुआ पानी प्लस ब्रह्मा जी ने धोए हुए चरणों का मिलकर आता है। जो डायरेक्टली आ रहा है वो गंगा देवी है और जो कमंडल से धोके आ रहा है वो गोदावरी है, ऐसा उसका उगम है। फिर अभी बहुत लंबा वर्णन है उस भगवान के रूप का। बलि महाराज ने देखा, अपने आप को भी देखा उनके अंदर, क्योंकि पृथ्वी भी नाप लिया ना उन्होंने, तो पृथ्वी भी उनके शरीर के अंदर देखते हैं वो, जैसे यशोदा माई देख रहे ना भगवान के मुख में, तो अपने आप को भी भगवान के मुख में झांकते हुए देखती है उसके अंदर वो। उसी तरह से अपने आप को भी देखते हुए, वामन देव को देखते हुए उनके अंदर देख रहे हैं सब, पृथ्वी लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, तो जितने लोक हैं, जितने देवता हैं, जितने प्राणी हैं, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, सब लोगों को उनके अंदर देखते हो। और वो विराट रूप के देवता लोग पुष्प वर्षाव करते हैं और उनका पूजन करते हैं, सब देवता प्रकट होकर उनका पूजन करने लगते हैं और ये सब देख रहे हैं। फिर भगवान वापस छोटे हो जाते हैं। इसमें बीच में कहा गया है कि अचानक जांबुवान प्रकट होते हैं। आपको मालूम है जांबुवान कौन है? रामायण के समय वो भालू थे जांबुवान, उनकी लड़की का विवाह कृष्ण से हुआ है अगले युग में, वो तो बहुत पुरानी बात है ये, हाँ जांबुवती, लेकिन ये सत्ययुग की बात है, तभी भी जांबुवान थे। त्रेतायुग में वो राम के साथ में युद्ध किया, राम के साथ में रावण से युद्ध किया, फिर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तभी अपनी पुत्री को उन्होंने कृष्ण भगवान को पत्नी के रूप में दिया, अमर जीव है वो, उनको मृत्यु नहीं है। तो अचानक वो प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर और भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं उसी समय। फिर उसके बाद में सब जो राक्षस थे ना वो क्रोध से पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे ब्राह्मण बन के आया था, तो चीटर निकला, ब्राह्मण बन के आया और हमारे राजा को भिखारी बनाने का प्लानिंग है उसको, मारो 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 करके शस्त्र लेके भाग जाते हैं। तो सारे देवता लोग उन पर आक्रमण करते हैं और सबका वध करने लगते हैं। तब बलि महाराज कहते हैं राक्षसों युद्ध मत करना, रुक जाना, समय हमारे फेवर में नहीं है, पहले था लेकिन हमारे हाथ से ब्राह्मण का अपराध हो गया है, इसलिए अभी हमारे समय लिए समय अनुकूल नहीं है। तो फिर सब लोग ना नरक लोक में भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। फिर शांत करके बलि महाराज फिर भी शांत है, उनको क्रोध नहीं आ रहा है कि अब मैं भिक्षुक बनूंगा, सौंदर्यहीन, बलहीन, धनहीन, लक्ष्मीहीन बन जाऊंगा, कोई दुख नहीं उनको। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही वामन देव दोबारा छोटे हो जाते हैं और कहते हैं बलि आपने तो कहा था कि 3 कदम भूमि देना है, लेकिन 2 कदम में सारी भूमि नाप लिया मैंने, 3रा कदम कहाँ रखूँ? तो राजा कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए आप मेरे सर पर अपना 3रा कदम रख लो। सर पे रखने का मतलब क्या होता है? सर पे किसी का पांव रखना मतलब अहंकार जो है ना उसका चूर, उसको चूर कर देना। किसी को जबरदस्ती आपको किसी ने सर पे पैर रखा तो भी आपका अहंकार चूर हो जाता है, और आप अगर सहमति से हाँ हाँ रखो रखो फिर भी आपको अहंकार चूर करके रखना पड़ता है उसको। तो सैर पर पैर रखने को बोलना, यानी वो अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रखना चाहते हैं। और जब ये डायलॉग बोलते हैं ना वो भगवान को कि सब कुछ तो मैं हार चुका हूँ, अभी मैं आप मेरा सर आपको देता हूँ, तो उनकी पत्नी जो है ना बहुत बुद्धिमान होती है, ज्ञानी होती है, वो कहती है कि इनको ये ज्ञान नहीं है कि ये शरीर उनका नहीं है, ये शरीर आपकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो दान करने का अधिकार क्या है तुमको? फिर भी भगवान कहते हैं ठीक है, उसने कम से कम ये सोचा कि मेरा सर आपको दे दूं। तो भगवान कहते हैं उस समय विंध्यावली उसकी पत्नी से बहुत प्रसन्न हो गए, वो बड़ी ज्ञानी थी वो, तो उस समय फिर गरुड़ जी क्या करते हैं, वरुण पास से उसको बांध देते हैं बलि महाराज को और उसको घसीटते हुए लेके आते हैं। आप सोच सकते हैं 3 लोगों का स्वामी, 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, करने वाला था, और इंद्र का पद प्राप्त करने वाला था, इतना बड़ा आदमी था वो, अचानक वो भिक्षुक हो गया और अचानक उसके पास 3रा कदम का दान देने के लिए साधन नहीं है, इसलिए देवताओं के द्वारा वरुण पास से बांधकर उसको घसीटकर अपमानित करके लिया जा रहा है, और फिर भी वह व्यक्ति विचलित नहीं हो रहा है। उसकी महानता यह है कि आचार्य लोग बताते हैं कि जब बलि महाराज को घसीट कर लाया जा रहा था तो बलि महाराज को भगवान की कृपा का असीम अनुभव हो रहा था, और अपमानित होकर दुखी होने के बदले में उसके मन में आनंद के फवारे उड़ रहे थे एक ही साथ में। बाहर से सबके सामने अपमान हो रहा है, उसकी पत्नी भी है, कई पत्नियां हैं, सगे संबंधी बैठे हुए हैं, राक्षसगण जो उनके अधिकारी उनके आदेश में काम करते थे, सबके राजा हैं वो, उनके सबके सामने उनका अपमान हो रहा है, फिर भी उनको हृदय के अंदर आत्मा के अंदर अति आनंद का अनुभव हो रहा है। कहते हैं ये केवल उसी व्यक्ति के लिए हो सकता है जो व्यक्ति भगवान का भक्त है। बाकी सभी व्यक्ति को जो भगवान के भक्त नहीं है, ज्ञानी है, योगी है, तपस्वी है, ये सब व्यक्तियों को अपमान होने पर असह्य हो जाता है और अपमान के समय कोई आनंद का अनुभव नहीं करता है। लेकिन बलि महाराज ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने आत्मनिवेदन किया, सरेंडर किया, पूरा सब कुछ दे दिया भगवान को, कुछ भी छोड़ा नहीं, अपने आप को भी अर्पण कर दिया। इसलिए वो आत्मनिवेदन नाम के नाइन्थ भक्ति के अंग के आचार्य माने गए। वो नवोदा भक्ति के हर एक अंग के एक एक आचार्य हैं, जैसे श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज है, कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी महाराज है, वैसे आत्मनिवेदन ये नवे अंग के आचार्य बलि महाराज है। और भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। उस समय भी वो कहते हैं कि भगवान मैं, मेरे द्वारा मेरे पास सब कुछ छीना गया उसके लिए दुखी नहीं हूँ, मुझे नरक में जाना पड़ेगा इसलिए भी दुखी नहीं हूँ, मुझे अरेस्ट किया गया इसलिए भी दुखी नहीं हूँ, मुझे दंड दिया जा रहा है उसके लिए भी दुखी नहीं हूँ, मुझे केवल ब्राह्मण को अगर मैंने दिया हुआ वचन नहीं पालन किया इससे जो अपकीर्ति होगी उससे मुझे डर है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जिस समय उसको जबरदस्ती से घसीटा जा रहा है, उस समय उसको दादाजी प्रहलाद जी प्रकट होते हैं वहाँ पर। तब तक नहीं थे वो, जामवान पहले आते हैं फिर प्रहलाद जी प्रकट होते हैं और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। कहते मैं बहुत गर्व करता हूँ मेरे पोते के ऊपर, कितना महान पोता है वो कि जिसने सर्वस्व आपको दान दे दिया, आपको पहचान कर आपके लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अभी आपने इसको बहुत दंड दे दिया है, मतलब सब कुछ छीन लिया, अपमान भी हो गया, कीर्ति भी छीन लिया, प्रभाव भी छीन लिया, सुंदरता छीन लिया, निस्तेज हो गया, सब हो गया, अभी आप रोक लीजिए यहाँ पर अपने आप को। तो भगवान उसके सर पर पाँव रखते हैं, उस समय प्रहलाद नाचने लगते हैं। तो भगवान प्रहलाद को पूछते हैं क्यों नाच रहे हैं आप? तो भगवान ने कहा मेरा पोता जो है वो मुझसे भी आगे चला गया, इस पर जो कृपा किया आपने वो मुझ पर भी नहीं किया था, मेरे लिए क्या किया था, गोद में बिठाकर हाथ से प्रेम किया था मुझसे, और जबान से जैसे एक सिंह अपने बछड़े को चाटता है ना वैसे आपने चाटा था, लेकिन पैर नहीं रखा था मेरे ऊपर। जब ये हो रहा था तो ब्रह्मा जी प्रहलाद का गौरव कर रहे थे, वो कहे हमको भी कभी प्राप्त नहीं हुआ ऐसा भाग्य, गोद में बिठाकर प्रेम किया जा रहा है, और गोद में बिठाकर जिसको प्रेम किया वो अभी गौरव कर रहे हैं बलि महाराज का, क्योंकि ये भाग्य आपने किसी को भी नहीं दिया जो बलि महाराज को दे रहे हैं, इसलिए मैं नाच रहा हूं। उसके बाद में भगवान ब्रह्म जी ब्रह्मा देव जो है ना वो भगवान से विनती कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सॉरी भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि ये सभी धन दौलत से नष्ट होने के बाद भी अपने भक्ति में स्थिर रहा, ये अपने पद से गिर गया फिर भी स्थिर रहा, इसको शत्रुओं के सामने देवताओं के सामने अपमानित किया गया, दंड दिया गया, फिर भी ये शांत रहा, इसके पत्नी ने इसके सगे संबंधियों ने इसके निंदा किया फिर भी ये शांत रहा, अपने सगे संबंधियों के और मित्रों के सामने और शत्रुओं के सामने इसकी निंदा की गई, इसका अपमान किया गया फिर भी शांत रहा, और गुरु ने भी उसको शाप दे दिया कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा फिर भी ये शांत रहा, यही इसके भक्ति का गौरव है। और मैंने इसको इतना दंड क्यों दिया, उसका गौरव प्रकट करने के लिए इतना दंड दिया, ताकि इसकी जो स्थिरता थी भक्ति में, सत्य वचन में स्थिर रहने की जो शक्ति है उसकी हर स्थिति में, क्योंकि इसमें से एक भी स्थिति में अगर हम आएंगे तो अपना सत्य वचन सब छोड़ देंगे हम, और जो भी झूठा बोलने के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि इतना सहन नहीं होता है किसी को, इतना भयंकर अपराध, इतनी दयनीय अवस्था, इतना अपमानास्पद दंड किसी को भी नहीं दिया गया आज तक, लेकिन इतना सब होने बाद भी बलि महाराज अपने वचन में दृढ़ रहे, भक्ति में स्थिर रहे, इसलिए भगवान उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी आप दिल थाम के सुनिए, नींद आ रही है तो भी खड़े होकर सुनिए कि भगवान अभी बलि को क्या क्या वरदान देने जा रहे हैं। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हमारी बचपन की जो कहानी थी वो इस जगह पर ख़त्म हो जाती है कि भगवान ने पैर दिया सर पे, उसको नरक में भेज दिया, बस कहानी ख़त्म। लेकिन बलि के गौरव की वास्तविक कहानी यहाँ शुरू होती है कि बलि का गौरव क्या था और भगवान के दिल में बलि का क्या पोजिशन था, ये उनके वरदान में दिखाई पड़ता है। तो भगवान पहले क्या बोले कि मैं तुम्हें सुतल लोक भेज दूंगा। अभी सुतल लोक कहाँ है मालूम है किसको? पृथ्वी बीच में है, उसके नीचे 6 लोक हैं, उसके नीचे 7 स्वर्ग लोक हैं। तो नीचे के लोक जो हैं उसको नरक लोक माना गया है, उसमें अतल वितल सुतल रसातल पाताल ऐसे 6 लोक हैं, अतल सुतल वितल तलातल रसातल और पाताल, 6 लोक है नीचे, उसमें सुतल लोक आता है नीचे वाला। आप बोलेंगे भगवान ने क्या बड़ा काम किया, उसको नीचे ही भेज दिया अल्टीमेटली। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल विश्वकर्मा को बुलाकर सुतल लोक बनाया है जो ऊपर वाले इंद्रलोक से भी कई गुना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि लग रहा है कि मैं आपको दंड दे रहा हूं, लेकिन जहां भेज रहा हूं उसको देखकर इंद्र को भी ईर्ष्या हो सकती है तुम्हारे ऊपर कि भगवान तो दिखा तो रहे कि दंड दे रहा हूं लेकिन दे रहे हैं मेरे घर से भी अधिक बड़ा घर उसको दे रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि इंद्र भी तुम्हारी सुतल लोक के ऐश्वर्य से ईर्ष्या करेगा, इसलिए इंद्र के सबसे पहले इंद्र ही आक्रमण करेगा आपके ऊपर ईर्ष्या के कारण कि मेरे से बड़ा लोक इसको दे दिया, मेरे शत्रु को भगवान ने। तो इंद्र से बचने के लिए मैं मेरा चक्र आपको दे दूंगा जो आपके सुतल लोक की रक्षा करेगा। दूसरा वरदान हो गया ना, पहले आपको इंद्र से भी बढ़कर लोक में राज्य दूंगा, दूसरा उसकी रक्षा के लिए मेरा खुद का जो वेपन है जो कोई मार नहीं सकता है चक्र को, अजय अस्त्र है मेरा, वो आपकी रक्षा करेगा। फिर मैं स्वयं चक्र के साथ आपके लोक की रक्षा करूंगा। फिर सुतल लोक में आपके जितने परिवार लोग जाएंगे ना, वो सब लोग कैसे रहेंगे देखो, जो आम तौर पे सुतल लोक का वरदान नहीं है वहां के लोग ऐसे रहते नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए सुतल लोक ऐसा बनाया है कि आपके साथ में जितने परिवार के लोग जाएंगे सब लोग मानसिक चिंताओं से मुक्त रहेंगे, नो मेंटल मिजरीज, नो फिजिकल मिजरीज, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई बुढ़ापा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा आपको, ना डायबिटीज होगा ना हाइपरटेंशन होगा, ऐसा आप रोग मुक्त रहेंगे, मन के रोग से मुक्त और शरीर के रोग से मुक्त। आप ही नहीं, आपके साथ जितने लोग रहे उतने भी रहेंगे। आगे सुतल लोक में किसी को थकान नहीं होगी, नो फटीग। आगे सुतल लोक में कोई किसी को चक्कर नहीं आएगा, डिजीनेस नहीं होगा। सुतल लोक में रहने वाले का कभी परास्त पराभव नहीं होगा, कभी हारेगा नहीं किसी चीज में, नो डिफीट फॉर हिम। और लास्ट में कहते हैं सुतल लोक में कोई भी भूकंप या कोई आंधी तूफान ऐसा कोई प्राकृतिक संकट कभी भी नहीं आएगा। तो बचा क्या फिर, क्या है ही, नो मिजरी ओनली, सब प्रकार की मिजरी खत्म। ये चौथा वरदान हो गया। पांचवा वरदान में क्या बोलते हैं कि बाकी लोकों के स्वर्ग लोकों के जो देवता है ना वो भी आप पर आक्रमण करके आपको परास्त नहीं कर सकते, आपका राज्य छीन नहीं सकते। छठवां वरदान देते हैं कि आपके सारे परिवार राक्षस कुल के हैं, आपकी पत्नियां बच्चे रिलेटिव जितने भी है उनके संग में रहते हुए भी आपकी चेतना आपकी कॉन्शियसनेस आपकी मति कभी भ्रष्ट नहीं होगी, यू विल बी नेवर अफेक्टेड बाय द डीमन कॉन्शियसनेस ऑल्दो सराउंडेड बाय डीमन रिलेटिव्स। राक्षसी परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी उनके संग में रहते हुए भी आपके चित्त पर कभी उसका संग का बुरा असर नहीं होगा। 6 हो गए। सातवां वरदान जो है ना वो सुनकर हम सबको बेहोश होना चाहिए। वो कहते हैं कि सातवें वरदान के रूप में कि मैं सुतल लोक में आकर आपका द्वारपाल बनूंगा, छड़ीदार बनूंगा, छड़ीदार, छड़ी लेके आपके द्वार पे खड़ा रहूंगा वॉचमैन की तरह। और आठवां वरदान देते हैं कि तुमने ये 100 यज्ञ किस लिए किए थे, तुम्हारे पास तो 3 लोकों का साम्राज्य था, इंद्र का भी साम्राज्य आपने छीन लिया था बलपूर्वक, 14 लोक आपके पास में है, फिर भी आप 100 यज्ञ क्यों करने जा रहे थे, क्योंकि आपको सारे देवता स्वेच्छा से मन से इच्छा से इंद्र मान ले, अस्वीकार करे, आपका इंद्र मैं हूं। देखो एक तो फोर्सफुली आप मेरे पर राज्य कर रहे हैं और ये आप दिल से मुझे राजा मान रहे हैं, इसमें फर्क है ना। तो फोर्सफुली सारे लोगों पर राज्य करने के बाद भी सारे देवता मेरे शत्रु हृदय से मुझे राजा मान ले, इसलिए आप सौ यज्ञ कर रहे थे। तो ये मनवंतर जब समाप्त होगा और अगला मनवंतर आएगा जिसमें 71 दिव्य युग होते हैं, एक दिव्य युग चार युगों का होता है, सत्य त्रेता द्वापर कली से मिलकर एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 71 युग होने के बाद में मनु बदली हो जाता है, तो अगले मनु के काल में आप इंद्र बन जाओगे। मतलब वो भी उसका इच्छा पूरा कर दिया उसने, एक ही इच्छा पूरा नहीं किया, जो मांगे जो करने के लिए सौ यज्ञ किए थे उसके ऊपर इतने बोनस दे दिया भगवान ने। और लास्ट में क्या बोलते हैं भगवान प्रहलाद को, प्रहलाद तुम भी आए हो, या जाओ अपने पोते को साथ लेके सुतल पे जाओ और तुम भी वहां पर रहो और ये सब सुख ऐश्वर्य का तुम भी आनंद ले लो अपने पोते के साथ। तो बाद में प्रहलाद के साथ भगवान भी चले जाते हैं, तो भगवान प्रहलाद को साथ में लेकर बलि महाराज सुतल लोक में प्रवेश करते हैं। कितने भाग्य की बात है। तो सुतल लोक में क्या होता है सुनते जाइए, तो समझ लूंगा आपको, थोड़ा समझ लूंगा। सुत, आपने कभी वृंदावन के मंदिर में गए, आप लोग बांके बिहारी के मंदिर में गए, दामोदर जी के मंदिर में गए, आपको अगर याद आता होगा तो मंदिर के प्रवेश द्वार में दो बैठने की जगह होती है ऐसी साइड में, ऐसे उधर पहरेदार बैठते रहते हैं, एक्चुअली अभी बैठते नहीं कोई, लेकिन वहाँ वो उनके बैठने की जगह है, जैसे जय विजय है ना वैसे बैठते हैं, और आगे भगवान का मंदिर है। तो वो दो जगह पर जहाँ प्रवेश द्वार है, दो जगह होती ना, एक जगह प्रहलाद बैठे, एक जगह भगवान बैठे, और भगवान और प्रहलाद निरंतर वहाँ पर बलि महाराज के गौरव की चर्चा करते रहे, भक्त चरित्र का वर्णन करते रहे दोनों बैठकर। अभी भगवान जब अदिति ने व्रत किया कि ये बलि ने सब कुछ छीन के मेरे बालकों को देवताओं को राज्यहीन कर दिया है, भिखारी बना दिया है, छुप छुप के गुफाओं में रह रहे हैं, उनका दुख मुझे दिखाने जाता, तो भगवान ने फिर अवतार लिया ना उनके। तो भगवान वैकुंठ से आए अवतार लेने के लिए, लक्ष्मी वैकुंठ में, और भगवान अपने अदिति नामक देवताओं की माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए वामन देव बनकर नीचे आए हैं। अभी जो भगवान अवतार लेते हैं ना दशावतार में से, तो कुछ समय पर रहते हैं पृथ्वी में। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को वध किया, राक्षसों को मार दिया, फिर प्रहलाद को गोद में बिठाया, प्रेम किया, देवताओं का पूजन स्वीकार किया, चले गए भगवान। राम भगवान आए, कुछ साल रहे, चले गए। कृष्ण भगवान आए, 125 साल रहे, चले गए। लेकिन हिरण्यक्ष मारने के लिए वराहदेव आए, कुछ समय रहे, चले गए। तो वामनदेव को भी कुछ समय होकर ये सब काम करके वापस जाना चाहिए था, लेकिन वामनदेव तो जाके बैठ गए सुतल लोक में। लक्ष्मी देवी परेशान हो गई, बोले कहाँ गए हमारे भगवान, भक्त का उद्धार करने के लिए गए तो वापस लौट के नहीं आए। तो उनको पता चला कि वो सुतल लोक चले गए बलि महाराज के पीछे, वहां पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। और ये भी पता चला उनको कि बलि के दरबार में कई दरवाजे हैं और वो रोज अलग अलग दरवाजे से प्रवेश करता है, तो हमारे पति देव भागते हैं उनके आने के पहले एक डोर से दूसरे डोर तक। आज कौन से दरवाजे से आ रहे हैं, वो 8 नंबर से आ रहे हैं, मैं 1 नंबर पे खड़ा हूँ, भागो 8 नंबर पे। आप कैसा होता है, आपको ट्रेन पकड़ना है, वो ट्रेन का बोर्ड 8 नंबर पे लगाया, अचानक अनाउंसमेंट होता है, सॉरी फॉर द अनाउंसमेंट, आज की 8 नंबर की गाड़ी 1 नंबर पे आएगी, तो आप लोग क्या करेंगे, आने दो क्या करना है, ऐसे नहीं बोलेंगे, तुरंत ब्रिज चढ़ के भागने लगेंगे, फिर बोलेंगे रुको 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 1 नंबर पे नहीं 3 नंबर पे आ रही है, फिर 3 नंबर भाग के आएंगे आप। वैसे 8 प्लेटफॉर्म अपने बोरीवली में है, 8-10 प्लेटफॉर्म, लेकिन बलि महाराज के दरबार में कई दरवाजे थे और बिना अनाउंसमेंट किए आते थे, जब आने लगते थे तो पता चलता था कौन से गेट से आ रहे हैं, तो भगवान हमारे भाग रहे हैं एक गेट से दूसरे गेट तक। तो लक्ष्मी देवी देखती है कि अरे मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे वैकुंठनाथ अपने भक्त के पीछे भाग रहे हैं, बड़ा दुख होता है उनको, बड़ा दुख होता है। तो कहते हैं आषाढ़ एकादशी के दिन हमारे प्रभु वामनदेव सुतल लोक में उन्होंने प्रवेश किया। एक और घटना, पंडरपुर एकादशी के दिन वामनदेव ने सुतल लोक में प्रवेश किया प्रहलाद जी के साथ। फिर रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी देवी आई, बहुत दिन से बात आए नहीं, इसलिए उसने सूतल लोक में प्रवेश किया और अपने पति को भागते हुए देखा, फिर दरबार में प्रवेश किया। तो बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, अरे माता जी लक्ष्मी देवी आ गई, तो चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले माता क्या चाहिए आपको? वो कहते हैं मैं आपको राखी बांधने आई हूँ। ठीक है, राखी बांध लेते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कहते बहन जी अभी आप मांगिए, आपको क्या वर चाहिए? तो वो कहते हैं कि ये मेरे पति को लौटा दो। तो ये उनका इच्छा सुनते ही बलि महाराज अपने सिंहासन से नीचे गिर जाते हैं बेहोश होकर। बहुत देर के बाद होश में आते हैं, रोने लगते हैं बहुत। वो कहते हैं इनको प्राप्त करने के लिए मैंने तीनों लोगों का साम्राज्य त्याग कर दिया है, मेरी शक्ति, मेरा तेज, मेरा सौंदर्य, मेरा अधिकार, मेरा प्रभाव, जो क्या बोलो आप, सब कुछ त्याग करके मैंने इस अनमोल रत्न को प्राप्त किया है और आप कह रहे हैं कि आपको दे दो, बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये। तो कहते हैं कम से कम एक वरदान दे दो कि रोज एक फिक्स गेट से आओगे ताकि इनकी भाग दौड़ कम हो जाएगी। देखो कितना अधिकार है बलि को, अपने वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान को भिक्षा मांगना पड़ रहा है लक्ष्मी देवी को प्राप्त करने के लिए, अपने ही पति को, जो उनका धन है, जो अभी उनके भक्त का धन बनकर बैठे हुए हैं। तो बलि लक्ष्मी देवी को अपने ही धन को किसी और से भिक्षा मांगनी पड़ रही कि मुझे दे दो। बलि महाराज बड़े होशियार हैं, वो क्या कहते हैं, बहन जी एक काम करो, आप दोनों मिलकर यहीं रहो, तो पति भी आपके साथ रहेंगे, मैं भी अपने पति का आपके संग करता रहूँगा। तो कहते हैं फिर अपने भाई की, नए नए बनाए भाई की इच्छा के अनुसार वो चतुर्मास के चारों महीने वहीं रहते हैं। फिर चतुर्मास समाप्त होता है ना, कार्तिकी पूर्णिमा आती है, तभी लक्ष्मी देवी फिर भाई से निवेदन करती है कि अभी हम चलते हैं, अभी हमने यहाँ पर बहुत निवास किया है। तो फिर वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए आषाढ़ एकादशी से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा तक हमारे भगवान सूतल लोक में बलि महाराज के साथ निवास करते हैं। फिर बलि महाराज उनसे और एक वरदान मांगते हैं कि मुझे साल में एक दिन आप ऊपर आने के लिए परमिशन देना कि मेरे राज्य में लोग सब आराम से रह रहे हैं देखने के लिए। इसलिए बलि प्रतिपदा के दिन बलि महाराज एक दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उस दिन हम लोग बलि पूजन करते हैं, बलि दैत्यराज पूजन। ऐसा ये सुंदर कथा है। तो ये चरित्र सुनने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। बलि महाराज का चरित्र जो है, एक राक्षस होते हुए भी उन्होंने आत्मनिवेदन नाम के भक्ति के अंग के आचार्य बने। वो हम लोग तो कितने बहाने बनाते हैं, अरे प्रभु जी हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, अरे प्रभु जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे प्रभु जी हम लोग धनवान नहीं हैं, हम लोग दिखने में सुंदर नहीं हैं, हमारा कुल अच्छा नहीं है, हमारा देश अच्छा नहीं है, हम काले हैं, कितने बहाने बनाते हैं हम लोग। ये तो राक्षस था, राक्षस का शिरोमणि था, दैत्यराज था वो। फिर भी जो सबसे कठिन अंग है भक्ति का, उस अंग के आचार्य बने वो। तो बलि महाराज अपने उदाहरण से एक ही मैसेज दे रहे हैं, भक्ति में कोई बहाना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर राक्षस भी अगर सर्वश्रेष्ठ आचार्य बन सकता है तो हम तो राक्षस तो नहीं कम से कम। इसलिए धन नहीं होने का, धन होने का या पढ़े लिखे होने का, नहीं होने का बहाना कभी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है किसी प्रकार की। नो हिंड्रेंस, नो ऑब्स्टिकल। भक्ति कोई भौतिक चीज़ है ही नहीं कि कोई भौतिक चीज़ उसमें अवरोध डाल सके। भक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक है, उसमें कोई स्वार्थ का लवलेश नहीं है। तपस्या में स्वार्थ होता है, कर्म में स्वार्थ होता है, ज्ञान प्राप्ति में भी स्वार्थ होता है, मोक्ष प्राप्ति में भी स्वार्थ होता है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे ज्ञान मिलना चाहिए, मुझे विरक्ति मिलनी चाहिए, मुझे कर्म का फल मिलना चाहिए। ये सब में मैं हूँ, मेरा स्वार्थ निहित है। लेकिन भक्ति ऐसा अंग है जो ये सभी स्वार्थी अंगों से मुक्त रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो कर्म का फल चाहते हैं वो भी अशांत हैं, जो ज्ञान होकर वैराग्य प्राप्त कर चुके हैं वो भी अशांत हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके वो भी अशांत है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त को ना भक्ति भुक्ति की इच्छा होती है, भोग लेने की इच्छा होती है, ना धन की इच्छा होती है, ना मोक्ष की इच्छा होती है, ना ज्ञान की इच्छा होती है। वो केवल भगवान का आनंद चाहते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, इसलिए वो निष्काम रहते हैं। स्वतः के लिए कोई काम वासना उसके मन में रहती नहीं है। और जो निष्काम होता है वही शांत रह सकता है। किसी के मन में कामना होगी तो तड़पते रहेगा वो। तो बलि महाराज का गौरव इसलिए है कि उससे बड़ा धनी व्यक्ति उस समय दुनिया में कोई नहीं था, जो एक क्षण में भिक्षुक बन गया। ना केवल भिक्षुक बन गया, उसका अपमान हो गया, शत्रुओं के सामने हुआ, मित्रों के सामने हुआ, पकड़कर घसीट लिया गया उसको। इतना सब होने पर भी उसने एक आदर्श भक्ति का एक चरम स्थान, चरम उदाहरण हमारे लिए प्रकट किया, इसलिए उसकी कथा भागवत में आती है। नहीं तो राक्षस का वर्णन भागवत में क्यों होना चाहिए। और उस समय प्रहलाद जी जब जाने लगे ना, तो जब प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया था, तो जब नरसिंह भगवान जाने लगे तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान आप जा रहे हो, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो तुरंत भगवान ने, नरसिंह भगवान ने अपनी एक मूर्ति बनाकर तुरंत प्रहलाद को दे दी। जैसे खड़े थे वैसे ही दे दिया, उग्र नरसिंह की मूर्ति दे दी उनको। बोले इसको आप पूजन करते रहो, इसके रूप में मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा, साक्षात साथ में रहूंगा। तो जब वो बलि महाराज को देखने के लिए आए, इस प्रसंग में आए, तो वो विग्रह को भी लेकर आए थे। लेकिन जब भगवान बोले तुम जाओ अभी सुतल लोक में जाओ, तो उन्होंने कहा साक्षात भगवान अगर देखने वाले मुझे, साक्षात भगवान ने वरदान दिया उनको भी कि तुम भी मुझको देखते रहोगे, तुम भी सब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे मेरे दर्शन करते हुए। तो उन्होंने कहा अभी साक्षात भगवान दर्शन कर देने वाले हैं तो मूर्ति की क्या जरूरत है। तो उन्होंने इस मूर्ति किसी को दे दी। उसकी एक लंबी कहानी है। वो मूर्ति आज हमारे गांव में मूलिका क्षेत्र नाम के क्षेत्र में है, मुल्की में, उग्र नरसिम्हा। जो मुल्क आप उड़पी यात्रा में आएंगे दिसंबर में, तो आपको विस्तार में कहानी बताएंगे उसकी, कि कैसे कैसे प्रहलाद के हाथ से वो हमारे साउथ इंडिया में पहुंची और वहाँ से कैसे 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 उस गांव में पहुंची। और आज भी वो उग्र नरसिंह की मूर्ति वहाँ पर है। इतनी सी मूर्ति है, केवल इतनी सी मूर्ति, उसमें 8 भुजा है और जंगा पर हिरण्यकश्यपु है, 2 हाथ से पकड़ा हुआ है, 2 हाथ से फाड़ रहे हैं, 2 हाथ से आंतड़ी निकाल के माला पहना रहे हैं और 2 हाथ में शंख पद्म है और 1 पैर पे खड़े हैं, 1 पैर मोड़ के दूसरे पैर पर रखा है और वो सीट पर हिरण्यकश्यपु को पकड़ाया। हिरण्यकश्यपु के हाथ में तलवार है और मुकुट पहना हुआ है। ये सब इतने से मूर्ति में है सब कुछ। सब सुंदर कथा है ये। तो भगवान की कथा सुनने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं, सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सब चिंताएं नष्ट हो जाती हैं और मन भगवान के सान्निध्य में रहता है। अभी हम पृथु महाराज की कथा नीचे पढ़ रहे हैं ना, पृथु महाराज को भी भगवान ने दर्शन दिया था। तो पृथु महाराज ने कहा कि मुझे आपके ऐसे भक्तों का संग दो जो निरंतर आपकी कथा बोलते रहते हैं, क्योंकि आपका जो अवतार हुआ है मेरे सामने खड़े हैं, वो कुछ देर में चले जाएंगे आप, लेकिन ना हम तिष्ठति वैकुंठे न च योगी नाम हृदयम च, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मिलकर मेरी कथा, मेरा गुणगान, मेरा कीर्तन करते रहते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, यत्र यानी जहाँ पर, गायन्ति यानी गाते हैं, मेरे बारे में वर्णन करते हैं, उनका नाम गाते हैं। मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त इकट्ठा होकर मेरे बारे में गायन करते हैं, गौरव करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं पर मैं रहता हूँ। इसलिए मैं आपको नहीं मांग रहा हूँ वरदान में, मैं आपके भक्तों का संग मांग रहा हूँ जो हमेशा, हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत से लेकर वो निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग मुझे दीजिए। ऐसे पृथु महाराज ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। प्रसाद लीजिए और दीपदान कीजिए। हाँ, सवाल सवाल पूछो ना। नहीं नहीं बलिमर्दन आषाढ़ी एकादशी नहीं हुआ, बलिमर्दन उसके पहले हुआ और आषाढ़ एकादशी को भगवान उसके साथ में चले गए। हो सकता है उसके बलि प्रतिपदा भी अलग है, बलि प्रतिपदा के दिन बलि महाराज सूतल लोक से ऊपर आते हैं पृथ्वी पर, वो बीच में आते हैं उसके, वो नहीं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। दीपदान।